कभी इंतजार ना करो कि खुशी तुम्हारे मुस्कुराहट का बायस बने। शायद खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है ताकि तुम मुस्कुराओ और वो तुम्हारे घर में दाखिल हो जाए। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह जिंदगी में। वालेकुम अस्सलाम।
मैं भी इतने खूबसूरत और प्यारे से नाज़िम की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। इस उम्मीद से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक हशाश पशाश और खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे हमारे अपने प्रोग्राम सुबह जिंदगी के साथ।
सुना है जुमेरात का प्रोग्राम अकेले आपने किया?
जी, मैंने
खुर्रम भाई को आना था, वो बहरहाल नहीं पहुंच पाए और मुझे बहरहाल इत्तला है इस सिलसिले की। प्रोग्राम थे नहीं लेकिन देखा ज़रूर। और ये मैं बताता चलूँ कि ये हफ़्ता बहुत ही अहम हफ़्ता है। एक तो सियासी लिहाज से जो ईरान की जो सियासत है उसके लिहाज से, एक 13 आबान जो यानी यहाँ का खजा का दूसरा महीना जो है आबान, उसमें जो है बहुत ही अहम वाकया पेश आए थे। कई वाकयात पेश आए थे जो आज से एक दो दिन में इंशाल्लाह हम आप नाज़रीन की खिदमत में बताएंगे और बहुत अहमियत है उसकी। और एक और चीज़ जो बहुत ही अहम यानी वाकया ये कह सकते हैं कि बहरहाल हर साल होता है लेकिन उसी जोश व जज्बे से होता है, वो मुहर्रम अल हराम का आगाज़ है। तो और उसकी तैयारियां मैं देख रहा था कि शहर भर में शुरू हो गई हैं।
तो मैंने पता है, मैंने ये नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरा ज़्यादा निकलना नहीं होता, लेकिन मेरी खुद की जो गली है उस तरफ, यानी आपको यकीन नहीं आएगा, यानी आज से 10 दिन पहले से, यानी अभी तो आज काफ़ी दिन गुजर गए, 10 दिन पहले से वो जोर व शोर से, वो जज्बा मखसूसन उन नौजवान लड़कों का जो मैंने देखा, मतलब वो इतनी खूबसूरती से वो चीज़ों को बना रहे थे, या उन्होंने जो बनाए थे जो तेखिए जो बोलते हैं
से वो कर काम
बिल्कुल,
कर रहे थे,
जो तेखिए बोलते बनाते हैं, फिर उसी मतलब वो 10 दिन पहले से ही उन्होंने वहाँ पर नूहे या जो इनके होते हैं जैसे ईरान में जो अलग सा वो होता है, उस तरह की चीज़ें लगाई थी वहाँ पर, बहुत खूबसूरत।
इंशाल्लाह कई चीज़ें हम यहाँ कहेंगे जो यहाँ के मखसूस अपनी रसूमात हैं इस सिलसिले की, वो आपको हम बताएँगे। एक और खबर जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि यानी मुख्तलिफ किस्म के जो खेल होते हैं उसमें ईरान की मुख्तलिफ किस्म के खेलों में कामयाबी। एक तो ख़ास किस्म की यहाँ की रवायती कुश्ती होती है, वो जो है काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं एशिया में फैल गई, उसमें ईरान ने पहली पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में ईरान ने एक बार फिर अपना रिकॉर्ड
तो हमेशा से ही तोड़ा रहा है,
उसमें माशाल्लाह गुज़श्ता 10 से मेरे ख्याल में 13 साल से ईरान के पास रिकॉर्ड है। तो इस सिलसिले में भी इंशाल्लाह तफसीलात आपकी खिदमत में हफ्ते भर में हम पेश करते रहेंगे। यकीनन आप लोगों को लुत्फ आएगा। आज का प्रोग्राम भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा अहम है। कैसे हमसे राबता कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद, इस ब्रेक के दौरान मुलाहिज़ा फरमाइए। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख के पछता तो नहीं रहे? तो हम लोगों का मौजू यही चल रहा है पछतावा, हमने कहा शायद आप लोग यहीं से शुरू कर दें, पछता तो नहीं रहे। तो
वैसे आपका क्या ख्याल है इस मौजू के बारे में, पछतावा? मैं कल रात को काफ़ी चीज़ें सोच रही थी कि हम ऐसा काम करते हैं क्यों है कि हम पछताएं, करना ही नहीं चाहिए। अब शायद वो कुछ ऐसी चीज़ें हों जो पेश आ जाए, वो एक अलग
मेरे ख्याल में यानी यकीनन ये बात अपनी जगह पे बहुत दुरुस्त है, लेकिन एक और बात जो है, बाज़ वक़्त आदमी अगर न पछताए किसी कोई काम न करके यानी करके न पछताए तो उसके यानी सही काम का उसके अंदाजन उसको अंदाजन नहीं,
या तो उसको सबक भी नहीं मिलेगा,
सबक नहीं मिलेगा,
यानी उस शायद उस पछतावे से उसको सबक मिले कि आगे जाके वो गलती ना दोहराए, या वो काम जो उसने किया या किसी का दिल दुखाया या कोई भी और किसी भी नजरिए के लिहाज से हम देखें तो शायद वो शायद ये हो के आगे जाके ना करे ये काम।
यकीनन ये बहुत ज्यादा अहम है, तो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, मुस्बत भी है इसका कह सकते हैं, मनफी पहलू भी है।
और अभी आपने कहा मुस्बत पहलू तो ये हो गया कि इंसान सबक लेता है, दूसरा पहलू ये कि बहुत से लोग इतने ऐसे होते हैं कि एक काम करते हैं पछताते हैं उस मौके पर, 2 मिनट बाद फिर भूल के फिर से वही काम हो रहा होता है।
बिल्कुल हाँ, ये भी है। एक हमारा, मैं याद है आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, एक हमारा क्लास फेलो था, बहुत इसरार था उनका कि आदमी जो काम यानी दूसरे कर रहे हैं उसको जरूर यानी वो काम उसको जरूर दोहराना चाहिए, वरना उसको इबरत कैसे हासिल होगी। और हमने कहा कि अगर दूसरों का आदमी देख ले और इबरत हासिल कर ले और फिर से खुद दोहराना चाहे तो ये तो अक्लमंदी की बात नहीं है। यानी इस सिलसिले में भी पछतावा अगर आप देखें मनफी पहलू हो गए
तो,
और इसमें यानी अगर आप देखें कि मुस्बत और मनफी बिल्कुल साथ साथ चल रहा
होता है, बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। अब ये कि हमको इसमें से खुद देखना है कि कौन सा जो है हमें अपनाना है या कौन सा जो है रास्ता हमारी जिंदगी के लिए ज्यादा बेहतर है।
यकीनन इसमें ज्यादातर कह सकते हैं मनफी पहलू है, तो इसलिए नाज़रीन के भी हम ख्यालात के मुंतजर रहेंगे। आप लोग, आपके बारे, यानी आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आपके मुख्तलिफ मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहेगा वेबसाइट पर, हम लोगों के यानी जो वेबसाइट पे जो कमेंट्स का हिस्सा है खसूसी तौर पर सोबो ज़िंदगी के लिए, वहाँ पर ईमेल के ज़रिए या फेसबुक पर हमें इंतज़ार
बिल्कुल
रहेगा आपके कमेंट्स का। अभी थोड़ी देर में हमें एक ख़ास मेहमान ज्वाइन करने जा रही
जी,
है।
मैं बता चलूँ नाजरीन को हमारे साथ सुलेल फातिमा साहिबा होंगी, कुछ ही देर में हमारे साथ प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगी। और आज का जो मौजू है वो मीडिया के मुतल्लिक है। वैसे आजकल ये बड़ा अहम मौजू है और हर घर में इसका मसला बहुत है,
बिल्कुल
मीडिया और टीवी की अहमियत या इसके फ़वाद या इसके नुकसान बच्चों की ज़िंदगी पर क्या पड़ रहे, माँ बाप का काफ़ी गहरा गहरा किरदार है इसके अंदर। तो इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे डॉक्टर सुलेल फातिमा साहिबा से।
तो हमारे
जी
साथ रहिएगा आज के प्रोग्राम सोबो ज़िंदगी में, और कई और मज़ेदार चीज़ें आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपको पता चलना है कि आप ऑनलाइन कैसे दांत मांज सकते हैं, हमारे साथ रहिएगा आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ, और एक चीज़ बताता चलूँ कि अहमद साहब ने लाहौर से, वैसे अहमद लाहौरी उनका वेब प्रोफाइल का
नहीं, वो
नाम
दुबई
है,
से,
दुबई से,
और उन्होंने मुझे
अच्छा लाहौर से
बताया
नहीं
जी,
है,
नहीं, दुबई से उन्होंने
हाँ
बताया
सही
था
कह
कि
रहे हैं, नहीं वैसे
जी,
उन्होंने कहा सऊदीया में, दुबई
सॉरी
भी नहीं है।
मेरे से ही गलती हो
चले
गई फिर।
उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सब और रुबाब बहन को सुबह बखैर और बहुत बहुत सलाम, और मेरी ये अर्ज़ है कि पाकिस्तान और ईरान के दोस्ती के मुताल्लिक कोई प्रोग्राम किया जाए। अहमद महमूद, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हम लोग, वैसे कोई दुश्मनी नहीं है आपस में, दोस्ती ही है, लेकिन इंशाल्लाह कोई हम लोग ज़रूर सोचेंगे और सिलसिले में कोई अच्छा सा प्रोग्राम आपके लिए तैयार करेंगे। मैं कम से कम सोबो ज़िंदगी के हवाले से तो बता ही सकता हूँ, दूसरे प्रोग्रामों के बारे में हम लोगों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वैसे होते रहते हैं। कई दफ़ा हम लोगों ने बहुत ही अजीम शख्सियात जैसे डॉक्टर इफ्तिखार आरिफ को हम लोगों ने बुलाया है, अपने प्रोग्राम में भी आए हैं, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आपकी खिदमत में हमने पेश किए हैं। तो हम लोगों के प्रोग्राम्स मुख्तलिफ आप देखते रहिएगा, पाकिस्तान के हवाले से भी हम लोगों के अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात, और वो जो हम तैयार करके लाएँ वो भी अपनी जगह पर, लेकिन सबसे पहले चलते हैं, उससे पहले चलते हैं हम रुबाब बहन के पास, वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगी
बहुत
अपने।
शुक्रिया हसन भाई, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज का मौजू फिर से बताती आपको चलूँ कि मीडिया के मुतल्लिक है। इस हम जो इंटरनेट या टीवी इस्तेमाल करते हैं, हमारी ज़िंदगी पे छा सा गया है। इस तरह इंटरनेट ना हो तो हम तो बस तसव्वुर ही नहीं कर सकते सांस लेने का भी। इस बारे में बात करेंगे हम डॉक्टर सुलेल फातिमा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
कैसे हैं
अस्सलाम,
डॉक्टर साहिबा?
अल्लाह का शुक्र।
बहुत बहुत खुश आमदीद डॉक्टर साहिबा। आप मौजू तो मैंने पहले बता दिया है। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि टीवी और इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस या इसके जो बोल सकते हैं नुकसान क्या हैं।
मैं बच्चों को ज़्यादा फोकस में रख के बात
जी
करना चाहूँगी, इसलिए कि आजकल बड़ा तो इतना समझदार होता है कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ कर
बिल्कुल
सकता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा फोकस करूँगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका स्क्रीन वॉचिंग टाइम यानी टीवी देखने का,
बिल्कुल
इंटरनेट यूज़ करने का, कंप्यूटर का, वीडियो गेम खेलने का, और आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से और दूसरे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिसकी वजह से ये सब उस ज़िंदगी में वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं इन सब
बिल्कुल
चीज़ों
बिल्कुल
से। तो अगर जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और ये वक्त उसकी ज़िंदगी में एक एक मायने पैदा करने लगता है, इसके फ़ायदे तो बहुत, फ़वाद बहुत हैं, लेकिन इसके
बिल्कुल
साथ साथ नुकसान को हम पीछे नहीं छोड़ सकते।
बिल्कुल
अगर वो ज़्यादा टीवी और कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहली बात ये है कि वो अपनी पढ़ाई में, जो कि उस वक्त उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उस फेज़ में उसके लिए बहुत ज़रूरी है,
सही
उसमें अपनी दिलचस्पी छोड़ देता
छोड़
है।
देगा बिल्कुल
साथ साथ वो खेलकूद भी कम कर देता है, वर्जिश भी कम कर देता है, इसलिए कि वो अब टीवी और कंप्यूटर इंटरनेट की तरफ
उसका रुझान ज़्यादा बढ़ी है।
जी बिल्कुल। और जब से हमारा ये वाईफाई यानी इंटरनेट वायरलेस कनेक्शन आया है, तो बस तो
बिल्कुल
फिर अब तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि किस
जी,
तरीके से
यानी आप
बताएं कि
जहाँ
अब
जा रहे हैं अवेलेबल है और जहाँ जा रहे हैं वहीं पे यूज़ कर सकते हैं।
एग्जैक्टली अब तो मतलब कि वो ही नहीं कि यहाँ पे रुक सकते थे। पहले तो ये होता था कि चले फ़ोन बिज़ी हो जाता है तो एक
सही,
लिमिट होती है कि इंसान एक दो
अम्मी
घंटे
से
यूज़ कर
डांट पड़ती थी कि
सकता
भाई फ़ोन क्यों एंगेज है।
है अब तो
बिल्कुल
वो सवाल ही नहीं, अब तो वाईफाई है, अम्मी दूसरे कमरे में, बच्चे दूसरे कमरे में।
बिल्कुल
इसके अलावा फैमिली इंटरेक्शन, जो घर वालों के साथ मेल जोल का टाइम है, वो भी बच्चा उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता और
ठीक
फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजार सकता।
ठीक
इसके साथ साथ बच्चे में ऐसी बीमारियां जो कि मोटापे, बैठे रहने की वजह से मोटापा तारी हो सकता है,
सही
उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इस मोटापे की वजह से और बड़े होकर नमूदार हो सकती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है,
डायबिटीज
प्लस डायबिटीज, पोस्चरल डिस्टर्बेंसेस सबसे ज़्यादा देखी गई
अच्छा
हैं, कि बच्चा बहुत देर तक एक पोस्चर में बैठा रहता है,
सही
ना सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, तो
ठीक
फिर खून की गर्दिश ना होने की वजह से उसको पैर में दर्द, गर्दन में दर्द. इसके अलावा माहिरीन ने एक पूरा सिंड्रोम का नाम दे दिया है.
अच्छा.
कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसके अंदर आंखों में खिंचाव या धुंधलापन होता है.
अच्छा, आपकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं.
जी बिल्कुल. आप जब बहुत देर तक एक स्टैटिस्टिकली स्क्रीन को देखेंगे तो उसके आपका आंखों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है.
अच्छा.
आंखें खिंचती हैं, आंखों में से पानी भी निकलता है.
सही.
और सर में दर्द की भी शिकायत रहती है.
ठीक.
इसके अलावा एक हैरत अंगेज रिसर्च है कि ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल बीमारी है जो कि ज़िंदगी के पहले 3 साल में नमूदार होती है.
सही.
लेकिन ये देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा टीवी के सामने बैठे रहते हैं उनमें ये भी ज़्यादा पाई गई है.
अच्छा.
इसके अलावा अमेरिका के उन शहरों में जहाँ पर मौसम बहुत ख़राब रहता है, यानी बच्चे बाहर खेलकूद नहीं कर सकते और घर में अपना ज़्यादा वक्त इस मीडिया और टेक्नोलॉजी के सामने गुजारते हैं तो उनमें भी ये वाली बीमारी पाई गई है.
ठीक. तो अक्सर ये भी देखा गया है कि माएँ थोड़ी यहाँ पे चलाक होती हैं, अबू तो काम पर चले जाते हैं, छोटे बच्चे भाई तंग कर रहे हैं, या 2 दिन बच्चे घर में हो गए तो बच्चों को कोई कार्टून लगा के दे दिया या कोई भी ऐसी चीज़ लगा के दे दी जिस बच्चों को बहुत अपनी तरफ खींचती है और माएँ लग जाती है काम में. ये काम उनका दुरुस्त है या नहीं?
अक्सर ये देखा गया है कि माएँ जब एक बच्चा जो 2 साल से कम है, जो चल फिर नहीं सकता और बच्चे को चाहिए अटेंशन.
अच्छा.
माँ घर में बहुत सारे अपने कामों में बिजी रहती है तो मसरूफ़ रहती है तो वो ये करती है कि अपने बच्चे को टीवी के सामने रख दे ताकि एक टीवी चलता रहे और बच्चे को ये लगे कि कोई है, जबकि ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है.
अच्छा.
रिसर्च कहती है कि ज़िंदगी के पहले 2 साल दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं.
अच्छा.
अगर इन 2 सालों में ऐसा कोई भी स्टिमुलस दिया जाए जिस तरह ज़ोरदार आवाज़ या जिससे बच्चा खौफ का
अच्छा,
शिकार हो जाए तो ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत बुरा है.
अच्छा. यानी ज़रूर पड़ेगा बच्चे के ऊपर.
जी बिल्कुल.
अच्छा, एक बात और भी है कि अक्सर हमने देखा गया है कि हम लोग ये नहीं सोचते, यानी ये एक सवाल ऐसे मेरे जहन में आया कि कुछ होता है प्रोग्राम्स होते हैं रेटेड होते हैं एज के लिहाज से, लेकिन आजकल के जो माँ बाप हैं इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि फला बच्चा 10 साल का ये प्रोग्राम देख सकता है या बच्चा जो 5 साल का वो प्रोग्राम नहीं देख सकता. इसका असर है हमारे बच्चों पे यानी पड़ता है या नहीं, या ये ऐसी रेटिंग्स अपनी तरफ से लगा दी है उन्होंने?
इसका ये जो रेटिंग्स होती है वो इसके पीछे एक पूरी एक रिसर्च कम्युनिटी होती है.
अच्छा.
रिसर्च एक पूरे एक माहिरीन का ग्रुप होता है जो ये डिसाइड करता है कि ये प्रोग्राम रेटेड है या नहीं है.
जी.
ये प्रोग्राम इस उम्र के बच्चे के लिए सही है देखना इसके लिए या नहीं है. तो आप
ख्याल रखें इस
बात का, हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो अव्वल मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब आपका बच्चा इस ग्रोइंग फेज़ में हो तो हम एक फैमिली टाइम रखें, फैमिली टीवी टाइम रखें जहाँ पर वो प्रोग्राम जो बच्चे के लिए सूटेबल है वो फैमिली बैठ के साथ देखें.
हमारे पहले जो ज़माना था उसमें होता था कि सब घर वाले मिल के साथ बैठ के एक सीरियल देख रहे हैं या कुछ इस तरह. बिल्कुल इस तरह होना चाहिए
और उस वक्त वो प्रोग्राम देखा जाए जो बच्चे के लिए सूटेबल है, ना कि हम अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम लगाएं बच्चे को भी बोले
जबरदस्ती बैठ के देखो. चले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. यहाँ से गुफ्तगू आगे चलाएंगे. चलते हैं हसन भाई के पास. जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया. तर्ज ज़िंदगी के हवाले से नाजरीन, हम लोगों की गुफ्तगू चल रही है. कैमरा आ रहा है, आएगा
और
आ गया. तो इस हवाले से हम लोगों की गुफ्तगू चल रही है. तर्ज ज़िंदगी बहुत अहम, यानी हम लोगों की जो गुफ्तगू चलती है हफ्ते भर में, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस लिहाज से अहम है कि हम लोगों को बाज़ ऐसे नुकात मिलते हैं. हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम जब जाके मुख्तलिफ चीज़ें तहकीक करते हैं या जाके देखते हैं, मुख्तलिफ मकाले पढ़ते हैं, तो हमें ख़ुद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो एक दिन अगर हफ्ते में हम लोग मुकर्रर कर दें कि वाकई अपने तर्ज ज़िंदगी पर देखें कि वाकई हम लोग सही तरह से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत, यानी हम लोगों की ज़िंदगी कम से कम बहुत बेहतर हो जाएगी. मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. और इस सिलसिले में भी मैंने आज के प्रोग्राम में भी थोड़ी बहुत चीज़ें तैयार की. एक दो और चीज़ें मैं अभी पढ़ रहा था तो बहुत ही मुफीद मुझे लगी. तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी, और प्रोग्राम के दौरान हमसे रबते के लिए आप फेसबुक के ज़रिए हमसे रबता कर सकते हैं, facebook.com/SUT Morning Show. तो ये हम लोगों का एड्रेस. अब देखते हैं कि आप लोग कितने अपने इस सिलसिले में, आज का एक तो मौजू है उसके हवाले से, और इसके अलावा हफ्ते का जो हम लोगों का मौजू चल रहा है यानी पछतावा, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, आपके ख्यालात का हमें इंतज़ार रहेगा. चलते हैं रुबाब बहन के पास.
जी बहुत शुक्रिया हसन भाई. डॉक्टर साहब, बहुत कुछ महीनों पहले या शायद पिछले साल ही अमेरिका में केस हुआ था कि एक बंदे ने स्कूल के अंदर जाके लाइक कितने बच्चों को शूट कर दिया था, और ये उसके बाद भी کافی کیسز ایسے ہوئے امریکہ کے دوسرے مختلف شہروں میں. بعد میں جب ریسرچ کی گئی تو بہت سے لوگوں نے جو سائیکالوجسٹ وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ ٹی وی کا وائلنس جو دکھاتے ہیں یا فلموں میں جو وائلنس ہوتا ہے اس کا اثر تھا ان کے اوپر, کافی گہرا اثر تھا. تو یہ میڈیا کا جو وائلنس ہے کتنا اثر رہتا ہے اس کا بچوں کے اوپر؟
آج کل تو ٹی وی کے علاوہ ایسی ایسی ویڈیو گیمز بن گئی ہیں
بالکل,
جس کے اندر بچے مختلف قسم کے ہتھیار اور بوم استعمال کر کے اپنے دشمن کو تباہ کرنا سیکھے, اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی ہے باہر بھی. میڈیا کے علاوہ بھی جب وہ بڑے ہو کے گھر کے باہر جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اگر بہت سارے ایسے دیکھے گئے کہ نہیں پسند, اور پھر بچوں کے ایسے کھلونے بھی بن گئے اب تو
کہ جس سے بالکل وہ اصلی لگتے ہیں, آپ دور سے دیکھیں تو اصلی گن سائڈ کے وہ ہوتی ہیں بالکل.
تو جب آپ کا بچہ اس قسم کے پروگرام سے, چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو چاہے وہ ویڈیو گیمز کے ذریعے ہو, زیادہ اس کو ایکسپوز ہوتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ جابرانہ سوچ کا شکار بن جاتا ہے. یا پھر یا تو وہ اپنے دنیا سے اپنے آس پاس کے گرد آس پاس کے لوگوں سے اتنا ڈرنے لگتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید سب لوگ ہی ایسے ہی ہیں, بہت خوف زیادہ ہو سکتا ہے. یا پھر وہ بڑا ہو کے ایک جارحانہ رویے کا مظاہرہ کر سکتا ہے.
تو یہ اس کے اندر کہیں رہ جاتی ہے بات اندر, یعنی بچپن میں ہی.
اس لیے کہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جب ہمارا دماغ بھی ہمارے جسم کی ساتھ ساتھ نشو نما پا رہا ہوتا ہے تو یہ سارے ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز بہت ضروری ہوتے ہیں,
یعنی رہ جاتے ہیں پھر ہمارے دماغ میں. ٹھیک, یہاں تو تم نے یہ بات کی والدین کا کردار تو زندگی کے ہر پہلو پہ بہت ضروری ہوتا ہے, والدین کا کردار اس حصے میں, زندگی کے اس حصے میں میڈیا یا انٹرنیٹ کے لیے کتنا کیا کردار ادا کرتا ہے؟
جس طرح آپ نے کہا والدین کا ہر حصے میں ضروری ہوتا ہے کردار, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک صحت مند اور ایک خوشگوار زندگی گزارے تو اس کے لیے ماں باپ کو چینج اپنے اندر سے لانا پڑے گا.
ٹھیک,
کوئی باہر سے آ کے آپ کے گھر کا ماحول نہیں چینج کر سکتا. تو اس کے لیے میں نے جس طرح پہلے ایک بات یہ تجویز کی تھی کہ ایک فیملی ٹی وی ٹائم رکھا جائے, جس کے اندر بچے, اگر آپ کے گھر میں 6-7 سال کا بچہ ہے تو ایک ایسا کارٹون جس میں کچھ سبق آموز کہانی ہو وہ دیکھا جائے, اور پھر پوری فیملی بیٹھ کے دیکھے تاکہ ایک شارٹ بعد میں ڈسکشن بھی کیا جا سکے کہ اس میں کیا ہوا اور بچہ شاید کچھ سیکھ بھی سکے.
ٹھیک ٹھیک,
تو ایک بات تو یہی کر سکتے ہیں. اور 2 سال سے کم عمر بچوں کے لیے تو کوئی ٹی وی کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کو مائیں ٹی وی کے آگے رکھ کے اپنے کام میں مصروف ہیں.
آپ یہ بھی سجیسٹ نہیں کریں گے کہ وہ جو چھوٹے بچوں کے جو کارٹون آتے ہیں لائک وہ ABC سکھا رہے ہیں, یہ بھی نہ حتیٰ نہ دیکھیں؟
اس لیول پہ جب وہ پروگرامز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس عمر کے بچوں کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم دوسرے پروگرام جو ایک رینڈم پروگرام چل رہا ہے ٹی وی پہ, اس کے آگے ہم اپنے بچے کو اگر رکھیں گے, اس میں اگر کبھی بہت زور کی آواز آئے گی تو وہ بچہ خوف
ڈر جائے گا.
اس کے علاوہ وہ جو وہ جو وقت ہے بچے کا 2 سال سے کم عمر بچہ, اس کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ انٹریکشن کرنا بہت ضروری ہے. وہ بول نہیں سکتا صحیح سے لیکن سمجھ سب سکتا ہے.
چلیں جی, یہاں تک تو یہ بھی بات ہے. ایک بات میرے ذہن میں کیا آئی کہ انٹرنیٹ کا استعمال تو اب ہمارے کو یہ ہے کہ اسکول میں بھی ہمیں بولا جا رہا ہے کہ آپ کو مثال فلاں چیز وہاں سے نکالنی ہے یا فلاں چیز وہ کرنی ہے, تو اس کا انٹرنیٹ کا ایک طرح سے بہت ضروری ہو گیا ہے. کس طرح کنٹرول کریں گے اس کو؟
جب ہم ہمارے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو سپروائزڈ انٹرنیٹ پرووائڈ کریں. مطلب کہ اگر آپ کا بچہ کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اب اس پہ اتنا روک ٹوک لگا دیں کہ وہ پھر گھر کے باہر ایسی اپارچونیٹیز دیکھے کہ یہ کہاں پہ اور کر سکتے
ہیں. آپ خود اس کو ایز اے پولیس, ایک طرح پولیس کی طرح اس پہ نظر رکھیں یا بول سکتے ہیں؟
ہم اس پہ نظر رکھیں اور اس کو اس کی اس طرح سے تربیت کریں اس نظر رکھنے کے معاملے میں کہ وہ بڑا ہو کے اپنے آپ کو خود اپنے آپ کی خود حفاظت کر سکے, کہ صحیح اور غلط میں خود تمیز پیدا کر سکے.
ڈاکٹر صاحبہ یہاں تو بہت شکریہ, وقت ہوا ہے حسن بھائی کے پاس چلنے کا, ان کی نئی نئی اور تازی خبریں سننے کا.
بہت بہت شکریہ. مجھے ایک چیز یاد آ گئی آپ کی گفتگو سن کے, یہ بھی تھوڑے دن پہلے ویسے فیس بک پہ چل رہی تھی کہ مجھے ٹی وی اس لیے آن رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب انٹرنیٹ پہ ہوتا ہوں تو مجھے اکیلے پن کا محسوس, یعنی اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی واقعی ہم لوگ کی زندگی کیسی کس طرف جا رہی ہے وہ بس اللہ ہی مالک ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی مزیدار سا نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ دانت آدمی جب مانجتا ہے تو واقعی نہیں سمجھتا کتنی دیر مانج رہا ہے. آپ یا جا کے کوئی گھڑی کے سامنے کھڑے ہو جائیں, ہال میں مہمان کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے آپ دانت مانج رہے ہوں, یا بہرحال اور دوسرے راستے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک جو بہت ہی اہم کام اس سلسلے میں کیا گیا ہے یونیورسٹی آف لوئی ویل, جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس میں ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں ان کی مدد سے ایک تحقیق ہوئی اور ایک زبردست ایک برش عام سا بظاہر عام سا اس میں سامنے آیا. اور اس کا خاص کام یہ ہے, اس برش کا وہ یہ ہے کہ اسمارٹ ہے, और आजकल आपने सुना होगा मोबाइल भी स्मार्ट हो गए हैं और हर एक स्मार्ट हो रहा है इंसान के अलावा, तो ये जो है इस सिलसिले में ये एक और कदम है। और कहा जाता है कि ये ब्रश बहुत ज़्यादा मुफीद है पूरे घर वालों के लिए, शायद बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारे एप्लीकेशंस हों मोबाइल फ़ोन पर आपके, खुदसन अगर स्मार्टफोन है आपके पास, जो मुफीद ना हो, लेकिन ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। घर में ये होता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो पता नहीं कितनी देर ब्रश कर लें, कि करें ना करें, 2 मिनट में भागें बाहर, डर लग जाए उनको हमाम में, बहरहाल इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ये जो है, एक तो मैं बताता चलूं कि ख़ुद ऐप जो है इसका ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट हो जाता है एक आपके स्मार्टफोन से, कोई भी हो सकता है, और अभी एंड्रॉयड के लिए वैसे वो बनाए, इसका एप्लीकेशन बनाए। तो इस सिलसिले में आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे जो हैं 3 से 4 कह सकते हैं टूथब्रश जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं इससे। और उसमें जो चीज़ कही जाती है वो ये है कि आप बच्चों का कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी देर उन्होंने किया है या नहीं किया है, और उसमें सिर्फ एक ब्रश के ऊपर एक बटन है, वो अगर आप दबा दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे ये कि मुद्दत 2 मिनट तक आदमी को ब्रश करना चाहिए, क्या वो आपके लिए काफ़ी है या नहीं है, वो आपको ब्रश बता सकता है। इसके अलावा इसमें और दीगर चीज़ें भी बताई गई हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आप सही तौर से ब्रश नहीं कर रहे हैं, आपके घर वाले सही तौर से ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो खतरात लाहक हो सकते हैं उसके बारे में भी वो बताता है कि इतनी देर में अगर आपने नहीं किया तो ऐसा प्लाक बन सकता है उसके ऊपर, दांत के ऊपर, और अगर उतनी देर नहीं किया तो वैसा प्लाक बन सकता है। लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि कई लोगों का कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि वो खुद आपको मैसेज भी देगा कि आपके ब्रश करने का टाइम हो गया है, और अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें वो खुद ब्रश और आपका मोबाइल फ़ोन, उसमें हर थोड़ी देर के बाद एक नया पैगाम आएगा कि अब आप ब्रश कर लें खुदा के वास्ते, या दूसरों पर रहम करें कम से कम। और इस सिलसिले में यानी अगर आप वाकई सोचें कि बाज़ वक़्त ये होता है कि आदमी के मुंह से बदबू आ रही होती है, दूसरों का अंदाज़ा हो रहा होता है, वो बेचारे क्या कैफियत उनकी होती है आप खुद सोच सकते हैं, और वो कहीं भागने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके साथ एक लिफ्ट में खड़े हुए हैं, या कहीं जाने का रास्ता नहीं है, या एक छोटे से कमरे में या किसी बूथ में, और आपकी बात उनको सुननी है हर हाल में, उन पर खुदा के वास्ते रहम कर लीजिए, ऐसी चीज़ आप लोग ख़रीद लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं बताई जा रही, $9 है शुरू में, $9, लेकिन अपने चीनी भाई जो हैं वो उसको सस्ते उसमें भी थोड़े दिन में ले आएंगे। चलते हैं, अगर आप तैयार हों तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर। जी नाज़रीन, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। बात हो रही थी, डॉक्टर सुलैल फातिमा भी इस सिलसिले में बहुत ही अच्छी मालूमात फराहम कर रही थी कि कैसे हम लोगों को काबू करना चाहिए खुद पर। आजकल के दौर में जब हर चीज़ इंटरनेट से मुत्तसिल हो गई है, एक ब्रश से लेकर और ख़ुद इंसान भी बस थोड़े दिन में मुत्तसिल अगर हो गया तो मालूम है बैटरी उसी के ज़रिए चार्ज हो रही है, दिल की जिसमें जो कह सकते हैं कि पेसमेकर जो लगा रहता है उसी के ज़रिए चार्ज होगा। तो एक और चीज़ मुझे बीच में याद आ गई, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन जो आप खाना इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही लजीज ईरानी खाना आपके सामने है, और चाय का पता नहीं वहाँ पे तुक है या नहीं, लेकिन बहरहाल चाय भी है साथ में। लेकिन एक चीज़ जो इस खाने के बारे में है, कब आपको मज़ा आएगा, ये उस वक्त आपको मज़ा आएगा जब कम से कम 4-5 लोग साथ में बैठे हों, खुदा अगर घर वाले हों तो यकीनन और ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों के यानी कह सकते हैं जब दोस्त जमा होते हैं तो उसमें अपना मज़ा होता है, लेकिन घर वालों के साथ, घर वालों से मतलब कोई भी आपके यानी रिश्ते के भी हो सकते हैं, वो आके आपके साथ जब बैठ के खाना खाते हैं तो उसमें दुगना मज़ा आता है। इसमें अगर आजकल आप देखें कि हम लोगों की ज़िंदगी कैसी हो गई है कि खाने के वक्त एक बेटा जो है वो किसी कमरे में इंटरनेट पे बैठा है, तो दूसरी बेटी जो है वो SMS पर कुछ अपने दोस्तों के साथ चैट वैट कर रही हैं, और वालिद जो हैं वो TV देख रहे हैं, और वालदा जो है अकेली मेज़ पे या बैठी हैं, या वो भी किचन में खाना लगा हुआ है, और हर एक जो है अलग आके खा रहा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो सकता है वो ये है कि अलग अलग जब आप खाना खाएंगे तो अलग अलग गर्म भी करना पड़ेगा, यानी एनर्जी और इक्तिसादी लिहाज से आपके लिए गैर मुफीद होगा, और यकीनन आपके जेब पर काफ़ी बोझ पड़ जाएगा। और इसके अलावा जो चीज़ कही जाती है वो ये है कि अगर आप देखें कि सब साथ में जब बैठ के खाना खाते हैं तो तवज्जो दूसरी तरफ बहुत कम रहती है, यानी आराम से आप एक मुख्तलिफ मौजूआत के बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। हालांकि कहा जाता है ज़्यादा गुफ्तगू न की जाए और खाने पर तवज्जो दी जाए, लेकिन खाना ज़्यादा यानी कह सकते हैं लगता है, और मज़ा बहुत ज़्यादा आता है खाना खाने में भी। और यानी अगर आप देखें कि खाना खाने की किस हद तक अहमियत है, कि ऑफिस में अगर आप कि आप अपने मॉनिटर के सामने या ऐसे ही आप बस काम करते हुए अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो आपको महसूस ही नहीं होता, और या आप ज़्यादा खा लेते हैं या कम खाते हैं क्योंकि आपको जल्दी जल्दी चबाना होता है, या अगर चबाना भी नहीं है तो आप निगल जाते हैं फौरन, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए गैर मुफीद साबित हो सकता है। एक और चीज़ जो इस सिलसिले में कही जाती है, कोशिश कीजिए कि ऑफिस में अगर हैं या मॉनिटर ऑफ करके आप अपना काम करें, या आप जाइए कम से कम अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी कॉलीग्स जो हैं उनके साथ बैठकर खाना खाइए या बहरहाल नाश्ता करिए, तो उसमें आपके लिए भी यानी बदन को आपके लगेगा और आपके लिए मुफीद भी साबित हो सकता है। एक और चीज़ जो कही जाती है, और अगर आप सोचिए इसके बारे में कि जितनी दुनिया भर में अहम मीटिंग्स होती हैं, आप देखिएगा लंच मीटिंग, ब्रेकफास्ट मीटिंग, इस सिलसिले में बहुत ही आपके लिए यानी दिलचस्प चीज़ होगी कि वो मीटिंग्स ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं और उनके नतायज बहुत बेहतर होते हैं। अतः ये आम ऑफिस के सतह की जो मीटिंग होती है उसमें भी ये चीज़ कह सकते हैं सही अब तक साबित हुई है। ये तहकीक हुई है एडोलसेंट हेल्थ मैगज़ीन में और तकरीबन 26,000 लोगों पर इसके बारे में तहकीक हुई और देखा गया कि जो लोग खुसन रात का खाना साथ में खाते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है और बदन के लिए उनके बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है। चलते हैं रुबाब बहन के पास।
बहुत शुक्रिया हसन, बहुत मुफीद बातें बताई आपने और मुझे इन्हीं मैं तो हमेशा मेरा ऐसा इस बात पर ताकीद रहती है कि घर में खाना वो चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो और क्यों ना जब तक सब जमा ना हो तो मैं खाना नहीं लगाती।
उसमें मैं एक और वो करना चाहूँ, कुछ एप्लीकेशन इसका भी बना दिया जाए। अच्छा, बारे में कुछ सोचना चाहिए कैसे इकट्ठा करें
इस बारे में, ब्लूटूथ हो जाना चाहिए बस, खाना ब्लूटूथ हो रहा है सबको।
हाँ, ये भी है।
जी बहुत शुक्रिया हसन जी। डॉक्टर साहिबा, 3 से 4 मिनट वक्त है हमारे पास और मैं एक चीज़ से पहले सवाल पूछ लूँ कि वालदैन बच्चों का रोल मॉडल होते हैं, ऐसा क्या करें जो बच्चों के लिए इस बात की अहमियत को उजागर करें कि आप मतलब फ़लाँ चीज़ आपके लिए सही नहीं है, मैंने फ़लाँ इंटरनेट पर आपको सर्च करना ये चीज़ सही नहीं है या फ़लाँ प्रोग्राम आपके लिए ठीक नहीं है, एक छोटी सी नसीहत या कंक्लूजन आप बोल दें किस तरह आप कहेंगे?
आजकल का ज़माना लेक्चर थेरेपी का तो ज़माना रहा नहीं, बल्कि हम
किसी के पास वक्त ही नहीं है सुनने के लिए,
यही तो बस एक्शन थेरेपी रह गई है कि बच्चा जब घर में आता है तो वो देखता है कि माँ थक गई है, अब अगर उसने आराम किया है नहीं किया तो वो टीवी के सामने है। अच्छा। या फिर बाप अगर ऑफिस से आए हैं तो फिर वो भी आके बस उनके लिए ऐसा लगता है कि रिलैक्सेशन सिर्फ टीवी और कंप्यूटर के दरमियान ही घूम रहा है उनके लिए। अब बच्चे के माइंड में वो इमेज नहीं रहा कि इसके अलावा भी कोई और दूसरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें इंसान अपने आप को रिलैक्स कर सकता
है। बिल्कुल,
तो हमें अपने घर से चेंज शुरू करना पड़ेगा कि
वालदैन को पहले,
वालदैन नो डाउट हमें पता है कि थकावट है दिन की पूरे काम की, माँ भी थकी हुई है बाप भी थका हुआ है, लेकिन जब वो घर में आने के बाद अपना वक्त अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली वालों के साथ गुजारेगा या फिर हम ये कह सकते हैं वीकेंड्स में पिकनिक या शाम में इस तरीके की, अब तो फैमिली में बूढ़ों को मिलने का भी रिवाज नहीं रहा,
पहले दादी होता था कि हफ्ते में एक दिन सब जमा होते थे दादा को मिलने के लिए दादी को मिलने के लिए,
बिल्कुल अब तो वो रिवाज भी नहीं रहा, तो हम उस रिवाज को वापस शुरू कर सकते हैं, इसलिए कि ये हमारे घर के लिए मुफीद है,
हमारे आइंदा बच्चे के आइंदा के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल
जी डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगू रही और इंशाल्लाह कि हमारे नाज़रीन को भी पसंद आएगी। वैसे डॉक्टर साहबा एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी कि अगर मतलब अभी मेरे बच्चों को एक तरह हमने वालदैन को तो ये बोल दिया कि आपको रोल मॉडल बनना है, बच्चों को हम किस तरह वो करें मोटिवेट करें, ठीक है कि आप यानी अभी का कोई बच्चा हमारा प्रोग्राम देख रहा है तो आप उसको क्या मैसेज देंगे कि कितना ये बुरा है इसके लिए काम?
मैं यहाँ से बात शुरू करूँगी कि आपके लिए हैरत ज़्यादा होगी कि एक बच्चा साल में 40,000 कमर्शल्स देखता है टीवी में, और हमारे घर में एक ऐसा माहौल होता है कि वो मार्केट में आने से पहले उसका खिलौना हमारे घर में ज़रूर आ जाना चाहिए।
अच्छा, ठीक।
तो हमें बच्चों को ये मकसद बताना पड़ेगा कि कमर्शियल्स के पीछे क्या मकसद है, इस प्रोग्राम के पीछे क्या मकसद है,
ठीक,
क्या ये हमें कोई अच्छी तरफ की अच्छी जगह की तरफ लेके जा रहे हैं या ये हमें वापस अपने तारीख की तरफ लेके जा रहे हैं।
सही, तो ये नहीं बच्चे के लिए उजागर करना ये द्वारा खुद बच्चा अगर समझे तो इस बात को, बहुत ही अहम बात है ये। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, आपको मुफीद गुफ्तगू रही, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नाज़रीन को भी आपकी गुफ्तगू पसंद आई होगी और मेरे तो बहुत मुफीद साबित हुई कि मैं अपने बच्चे पे बातों को लागू कर सकूँ। जी जी हसन भाई
बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत मुफीद बातें की हैं, खुद आजकल के दौर में जब हर चीज़ जैसे डिजिटल हो गई, अभी बात इसी के बारे में हो रही थी नाज़रीन, और बस हम लोग ऐसा काम करें कि बाद में हम लोग को पछतावा ना हो।
मैं हसन भाई आपकी बात में एक बात बोलूँगी, एक ईरानी फिल्म थी उसमें एक बड़ा खूबसूरत कलम जुमला इस्तेमाल हुआ था, बोला कि जिंदगी ब्लूटूथ जिंदगी हो गई, अब तो एहसास और जो हमारे जो इमोशंस हैं हम उनको भी ब्लूटूथ के जरिए ही खाली आपस में शेयर कर सकते हैं।
यकीनन उसमें एक जो चीज़ थी वो ये है कि आज से तकरीबन 30 साल पहले 40 साल पहले ये होता था कि जब टेलीफोन उतना आम नहीं हुआ था, 40 साल पहले तो हो गया था, लेकिन बहरहाल ये होता था कि लोग जाके एक दूसरे से मिलते थे, जब टेलीफोन ज्यादा हो गया तो टेलीफोन ने मिलने की जगह ले ली, और आजकल एसएमएस भेजा जाता है,
एसएमएस हो गया, या जो आप क्या कहते हैं वो वीडियो चैट्स जो होती हैं, तो पहले एक दूसरे के घर जाते थे, अब वो वीडियो पे ही देख लिया आपस में एक दूसरे को, खत्म
नहीं। और उसमें वो तो वीडियो चैट तो बिल्कुल करीबी वालों से होता है, जो जरा सा हटके होते हैं, चाचाजाद मामूजाद, इन सबसे वो एसएमएस से ही होता है, और मुलाकात महीनों हो जाती है, नहीं होती।
बिल्कुल,
तो पछतावा हम लोगों को ना हो, ऐसा काम करें। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक तराना सुनिया। मनाजर तो अच्छे थे, मुझे तो ये पसंद है, तस्वीरों में ठीक ठाक रंग वंग भी था। उसमें ये होता है कि आदमी सुबह को ये सब चीज़ें देख के काफ़ी हद तक ताज़ा हो जाता है। और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी जो होती है वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक ख़ास, आप कह सकते हैं कि रास्ते पर चल रही होती है। ज़रा सा अगर हम लोग हटा देते हैं तो उसमें ऐसा लगने लगता है जैसे बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। तो उसमें ये चीज़, इसका मतलब है ज़रूरी होती है कि हम लोग हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई तब्दीली अपने ज़िंदगी में ज़रूर लाएँ, मुस्बत तब्दीली। मनफी तब्दीली के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और ऐसी हो कि बाद में हमें पछतावा, ऐसी तब्दीली हो कि बाद में पछतावा ना हो। इस वक्त मौलाना अली अब्बास ख़ान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह,
खैरियत से हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह,
बहुत बहुत शुक्रिया कि बहरहाल सुबह 7 बजे हम लोगों को आपने वक्त दिया है। और यकीनन आपके, आप काफ़ी मसरूफ़ होंगे। हम लोगों का मौजू चल रहा है मौलाना साहब पछतावे के हवाले से। पछताना जो है किन चीज़ों में होना चाहिए, किन चीज़ों में नहीं होना चाहिए, और इस तरह के सैकड़ों मौजूआत हैं। लेकिन अगर पहला कदम हम लोग उठाना चाहें न पछताने के लिए, वो क्या होगा?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले जिस बात को नज़र में रखना ज़रूरी है वो जो काम हम ज़िंदगी में अंजाम दे रहे हैं उसके ऊपर गौर है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन्नदमु अलल खतीअति यमहुहा, ये अगर इंसान जो गलती कर रहा है उसके बारे में अगर पशिमान होता है या उसको नदामत होती है तो ये चीज़ उस गलती को ख़त्म कर देती है। ये पहली चीज़ जो हमें नज़र में रखना है वो ये कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें गलतियाँ कम से कम हों।
जी,
जितनी गलतियाँ कम होंगी उतनी ये पशेमानी और नदामत भी खुद बहुत कम होती चली जाएगी। ये पहला कदम है।
अच्छा मौलाना साहब, आप तो कोई सवाल है,
मेरा ये सवाल है कि मौलाना साहब ने कहा कि हम अगर पशेमानी करते हैं तो वो गलती ख़त्म होती जाती है, लेकिन मौलाना साहब अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पशेमानी करते हैं, गलती करके पशेमानी होती है उन्हें, लेकिन फिर कुछ यानी एक दिन बाद या हफ्ते बाद या महीने बाद फिर भूल के फिर वही गलती को तकरार करते हैं या फिर से उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
जी, ये होता रहता है बहरहाल इंसान की ज़िंदगी में कि एक बार वो अपने काम से पशेमान होता है, कुछ दिन गुजरने के बाद जो है वो भूल जाता है, फिर दोबारा उसको आगे करता है।
अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा इसी सिलसिले में, वो ये है कि आदमी को यानी आम हालात में जब यानी किसी काम की तरफ कदम आगे बढ़ाता है, ऐसी तनाजुर में यानी मैं पूछना चाहूँगा, वो ये है कि हर दफ़ा खुद तजुर्बा करना चाहता है, क्या दूसरों की पशेमानी से हम लोग को इबरत हासिल करनी चाहिए या नहीं?
बेशक करनी चाहिए। मलाइका अलैहिस्सलाम की बहुत खूबसूरत यहाँ पर हदीस है, हजरत फरमाते हैं कि खुदावंद मुताला ने तुम्हें दो जिंदगियां नहीं दी हैं कि तुम एक में आके तजुर्बा करो और फिर दूसरे में आके उसके ऊपर अमल करो, बल्कि एक ही जिंदगी दी, इसलिए जरूरी है जो गुज़श्ता लोग हैं तुम्हें, तुम उनकी जिंदगी से तजुर्बा हासिल करके अपनी जिंदगी में उसके ऊपर अमल करो। तो कभी कभी ये हो जाता है हमारी जिंदगी में कि हम खुद चाहते हैं कि हर चीज को तजुर्बा करें, तो बार बार हमें जो है वो पशेमानी का सामना करना पड़ता है।
अच्छा, तो इसमें पशेमानी क्या यानी कह सकते हैं आदमी जब पशेमान हो जाता है या मतलब ऐसा कोई काम करता है तो क्या उसका गुनाह है, क्या है सवाब है, क्या है यानी किस उसमें आता है?
नहीं देखिए, खुद पशेमानी अगर इंसान ने कोई गलती की है तो रिवायात में मिलता है कि पशेमानी खुद एक तौबा है।
जी,
यानी अगर इंसान ने कोई गलत काम किया है और उससे वो पशेमान हो रहा है, नादिम हो रहा है और उसकी समझ में आ रहा है कि उसने गलत काम किया है, तो ये वही तौबा की हकीकत है।
जी,
क्योंकि तौबा की हकीकत में जरूरी है कि इंसान अपनी जबान के ऊपर अल्फाज लेके आए, बल्कि यही जो उसके अंदर कैफियत और हालत तारी हो जाती है खुद यही पशेमान हो जाना, यही तौबा की हकीकत है।
अच्छा,
तो जितने भी आसार हैं तौबा के वो इस पशेमानी के ऊपर भी आते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन।
جی ناظرین دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. جی مولانا صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے, ایک چھوٹا سا اگر آپ خلاصہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کے لیے کیجیے جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پشیمانی کے سلسلے میں. ڈاکٹر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں,
میرے خیال میں رابطہ منقطع ہو گیا ہے ہمارا مولانا صاحب سے, تو بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا علی عباس خان صاحب کا.
ہو سکے تو کل ضرور رابطے میں رہیں گے.
تو کل کے موضوع کے بارے میں آپ بتائیں.
کل کا اتوار کا دن ہے اور ننھے منہ بچوں کا دن ہے, پیارے پیارے بچوں کا دن ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اغلا حکیمی موجود ہوں گی اور ہم بچوں کے مختلف بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے ان سے
انشاءاللہ. تو ڈاکٹر اغلا حکیمی کے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو, اوپر دیکھیے ہم لوگوں کا کیمرہ یہاں پہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, تو اس میں جو آپ کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں پروگرام کے دوران یا ای میل اور کمنٹ کے ذریعے پروگرام کے سے پہلے. تو آپ کے خیالات کے منتظر رہیں گے,
کوشش کریں گے کہ جو بھی سوال ہو ہم ان کے جواب آپ کو لے کے دیں. ناظرین بہت بہت شکریہ ہمارا پروگرام دیکھنے کا, ہمارے ساتھ رہنے کا, اور ہمارا یہی دعا ہوگی کہ ہم سب کے جو قدم آج اٹھے وہ رزق حلال کی طرف اٹھے
انشاءاللہ.
اور ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا حافظ.